मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः प्रणामि ऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् गोच्छामि नियमसारम् केवली सुदकेवली गणिदम्।
यह प्रवचन रत्न चिंतामणि नामक जो शास्त्र है, भाग दूसरा, इसमें हम गाथा 38वीं चल रही अपनी, और उसमें बात ये बताई जा रही है कि यह जो जीव है वह सात पर्यायात्मक जो तत्व है उनसे जुदा है, उनसे तद्दन भिन्न है। ये बात तो अपनी पहली हो गई है। अभी यहां कहते हैं इस जीव के जो पांच भाव है उसमें से चार भाव जो है वह चार भाव इनसे जुदा ऐसा यह आत्मा है। ये जो परम परिणामिक भाव जो है वह परम परिणामिक भाव औक्षमिक क्षायोक्षमिक क्षायिक और औदयिक भाव के आश्रय से प्राप्त नहीं होता। अगर हमें परम परिणामिक भाव को पर्याय में प्राप्त करना है तो इनसे, इन चारों भावों से जुदा ऐसा जो परम परिणामिक भाव है उसका हम आश्रय लेते हैं, उसका आधार करते हैं या उसी में एकाग्र होते हैं तो वह अपने ज्ञान में आ जाए, ख्याल में आ जाए, ग्रहण हो जाए उसका, ऐसी बात है। तो यहां तक तो हमने देखा था, तो पृष्ठ क्रमांक 39 पर हम आए थे। जो पहला जो चार पांच लाइन का पैराग्राफ है वो खत्म हो गया है। यहां के औदयिक आदि चार भावांतरों ने, तो भावांतरों एटले अनेरा भावो, अनेरा यानी जुदा। कोना थी अनेरा, बात पूछी गई कि भाई किससे जुदा है, तो नहीं तो हो गया। डॉक्टर तो आया नहीं, चलो हो गया है जो अश्रुबेन, मुझे तो नहीं लगता है। थर्टी नाइन पेज पर हम आए हैं, चलो पढ़ लेते, कोई बात नहीं, दो बार पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। क्या कहते हैं, त्रिकाली न्यायक भाव थी, त्रिकाली न्यायक भाव कहो या ध्रुव भाव कहो या परम परिणामिक भाव कहो, सबकी बात एक ही है। इसलिए कहते हैं त्रिकाली न्यायक भाव थी, न्यायक भाव यानी देखो न्यायक भी नहीं कहा, न्यायक पना जिसमें है ऐसा जो है वह न्यायक भाव, वो कैसा है, ध्रुव भाव। एनाथी जे अनेरा भाव, अनेते अनेरा पर्याय ने, अर्थात अनेरा भाव थी ध्रुव भाव अगोचर छे। यानी क्या कहते हैं कि वो भाव का हम आश्रय लेते हैं, उन चार भावों का आश्रय लेते हैं तो यह जो न्यायक भाव है या ध्रुव भाव है वह अपने हाथ नहीं आने वाला, इसलिए उनसे वह ध्रुव भाव अगोचर छे, अनेरा भाव थी ध्रुव भाव अनेरो छे, ऐसा समझाते। एटले एम कहे छे कि आ चार पर्यायना आश्रय आत्मा अनुभव में आवतो नथी, जो के औक्षमिक क्षायोक्षमिक ने क्षायिक भाव ने तो आत्मा गम्य ज छे। क्या कहते हैं, हम औक्षमिक भाव के द्वारा या क्षायोक्षमिक भाव के द्वारा और क्षायिक भाव के द्वारा आत्मा को तो पकड़ सकते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उन भावों का आश्रय लेंगे, ये जो भाव जो है औष्मिक भाव आदि जो भाव है वे परम परिणामिक भाव स्वरूप, ऐसा जो ज्ञायक भाव है या ध्रुव भाव है उसका आश्रय लेते हैं तो वो उसके लिए गम्य है, यानी उससे वह ग्रहित होता है। हा? क्या कहा, देखो देखो, जो के थर्ड लाइन, औपशमिक क्षायोपशमिक अनेक क्षायिक भाव ने तो आत्मा गम्य जो छे, परंतु आई तो एम सिद्ध करवू छे के जे पर्याय छे तेना आश्रय परम परिणामिक भाव नो अनुभव थतो नथी। ख्याल में आया, उन भावों से आत्मा गम्य है लेकिन उन भावों का आश्रय लो, क्योंकि वो पर्यायात्मक है, उन पर्याय भावों का अगर आप आश्रय लेते हैं, क्योंकि औदयिक भाव आदि जो सारे भाव परिणाम है वो तो पर्यायमय है। ख्याल में आया, तो कहते हैं जे पर्याय छे तेना आश्रय परम परिणामिक भावनो अनुभव थतो नथी, आत्मानो अनुभव त्रिकाली भगवान आत्मामां अंतर ढळता थाय छे। आटली बात करवी छे, यही बात इस गाथा के द्वारा हमें समझानी है। इसलिए कहते हैं केवल ज्ञान जैसा जो अति उत्तम ज्ञान की जो अवस्था है उससे भी आत्मा जुदा है। जा केवल ज्ञान थी भिन्न त्रिकाली आत्मा नो अनुभव लेवो छे ने, क्योंकि केवल ज्ञान का आश्रय लोगे तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि वो क्षायिक भाव है। हाँ जी, फिर से नहीं, देखो 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 देखो, हम पहले आपसे पूछते हैं जो क्षणिक वस्तु है या क्षणिक जो की जो भी चीज है, क्या उसके आश्रय से हमें आत्मा का अनुभव होगा, या जो त्रिकाली टिकने वाला है जिसका हम आश्रय कर सकते, जो एक समय की पर्याय उसका आश्रय लेने के पहले ही वो, क्योंकि क्या है मति श्रुत ज्ञान जो है वो ऐसा कमकुवत कमजोर ज्ञान है कि हमें किसी भी बात का ज्ञान असंख्यात समय जाने के बाद होता है। मुझे जो राग आया है वो असंख्य समय जाने के बाद मेरे ज्ञान में आता है। तो जो एक समय की जो पर्याय है वो एक समय की पर्याय ज्ञात होने में इतना टाइम लगे, तो हम आश्रय किसका लेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है क्या उसका हम आश्रय लेंगे। तो पहले तो ऐसा हमको इससे जुदा है, इससे जुदा है, इससे जुदा है, ऐसा कहकर सबसे जुदा ऐसा जो आत्मा है कौन, तो परम परिणामिक भाव कहो या न्यायिक भाव कहो, ऐसा जो आत्मा है उसका आश्रय करेंगे तो आत्मा ज्ञान में आएगा। कैसा? हाँ,
यहाँ तो भेद का लक्ष्य छुड़ाना है, जैसे सोना है और उसमें डिजाइन्स है, बंगड़ी है, कोई कुंडल है, कुछ है, अभी सबका आश्रय छोड़ना है, उसका लक्ष्य छोड़ना है और अकेले सोने का लक्ष्य करना है। भेद कब किए थे? जब वस्तु को जानते थे तभी औदयिक भाव है, क्षायिक भाव है, क्षायोपशमिक भाव है, इस तरह से वस्तु को सभी बाजू सभी एंगल से जाना, तभी तो वो तो उसको हमने नाम अलग अलग दिए। अभी वस्तु का लक्ष्य करना है तो सबको गौण कर दिया, ये कौन सी पर्याय है, पर्याय है द्रव्य में परंतु ये कौन सी पर्याय है, ये सारा उसमें हमने गौण कर दिया, तो अभी क्या रहा, वहां सामान्य रहा। विशेषों को गौण किया क्योंकि वो अलग वस्तु नहीं है, वो एंटिटी कुछ दूसरी नहीं है, जहां सामान्य है वहीं पर विशेष है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। अगर विशेषों का लक्ष्य करेंगे, भेद करेंगे, तो राग की उत्पत्ति होगी। इसलिए भेद को जानकर हमने वस्तु को पहचाना कि ये वस्तु है, कि जिसमें ये अभी औदयिक भाव था या अभी क्षोभश्रमिक भाव था, अब औपशमिक भाव हुआ है, या जो कुछ है क्षायिक भाव है या होगा, तो ये जो वस्तु है तो वो किसके आश्रय से ये सारे औपशमिक क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव उत्पन्न होते हैं, आश्रय करने वाला कौन सा भाव है? लिखा ना, आत्मा अनुभव में आवतो नथी या अनुभव में आवे छे, तो अनुभव कौन सा भाव है? हाँ, छद्मस्थ अवस्था में क्षौपशमिक भाव है और केवल ज्ञान होने पर क्षायिक भाव है, क्योंकि वो तो क्षायिक ज्ञान से अनुभव में अनुभव कर रहे हैं। तो ये तो अनुभव तो पर्याय है, परंतु ये पर्याय जो अनुभव कर रही है वो मैं यह अनुभव कर रही हूँ, मैं पर्याय हूँ, इस तरह से अनुभव नहीं होता। वो जो जानने वाली पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो जाती है ना, वो अपना पर्याय रूप को उसने गौण कर दिया, सामान्य को ही यह मैं हूँ इस तरह से जानने लगी, तब उसको कहते हैं परम पारिणामिक भाव का आश्रय किया।
अभी आपका जो कहना है कि भाई ये तो अधूरा आत्मा जो है ना वो गुण पर्यायात्मक है या जो सामान्य विशेषात्मक है, तो अभी सामान्य को हम मुख्य करके तो वो जो गौण किया वो है क्या? नहीं, उधर दोनों है, लेकिन हमारा विशेष लक्ष्य किसके ऊपर है? सामान्य पर है। तो अनुभव में तो पूरा आत्मा ही आएगा, सिर्फ सामान्य सामान्य नहीं आएगा, लेकिन उस अनुभव में ये सामान्य और ये विशेष है ऐसा भेद भी नहीं रहेगा। हाँ, कहने में ये मुख्यता और ये होता है, ज्ञान में तो अभेद ही आत्मा आएगा। देखो, कोई भी वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित होती ही नहीं, और उसको खंडित करे जाए तो पूर्ण वस्तु हाथ में नहीं आवेगी। तो हम तो समझते एक पर्टिकुलर जो उस समय के अनुभव काल की जो पर्याय है वो पर्याय हाथ में नहीं आएगी, लेकिन वो तीन काल की पर्याय सहित जो काल स्व काल है उसका, वो तो उसमें गर्भित है।
यानी सभी भेद जिसमें गर्भित है ऐसा अभेद लेना,
टू बी वेरी शॉर्ट। देखो, ऐसी बात है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपका इस तरह कहना है, भाई कहना तो नई की अपेक्षा से कहा जाएगा और अनुभव तो नयातीत है, नए पक्ष को छोड़कर पक्षातिक्रांत होकर जो कुछ अवस्था होगी वो अनुभव की अवस्था होगी। और लोगों का ऐसा ही कहना है कि आप तो एक नए से बात करते हो, जो निश्चय नए से बात करते हो, तो आत्मा का निश्चय नहीं कर कहेंगे तो उसका आधा पार्ट ही आपने लिया, क्योंकि नए तो एक वस्तु का अंश है, एक वस्तु के अंश को कथन करने वाला है, ज्ञान करने वाला ऐसा नए है, तो आपको अनुभव आधे आत्मा का हुआ है पूरे नहीं। ऐसा आरोप कई सज्जनों का है, ख्याल में, लेकिन ऐसी बात है नहीं। कथन में नए होते, वस्तु में नए नहीं होते, उसको जिस अपेक्षा से हम कहेंगे, जैसा अभी हम कहेंगे कि भाई ये सोना है, तो सोना है तो उसकी कोई ना कोई अवस्था होगी क्या? नहीं होगी। जब हम अवस्था को देख रहे हैं तो सोनेपने को हम नहीं देख रहे। अरे ये तो बिस्किट है, अरे ये तो हार है, ये तो कुंडल है, इस तरह हम पर्याय पर, लेकिन जब हम पर्याय की बात सोच रहे हैं तो वहां वो सोना है कि नहीं? तो जब हम सोने को देख रहे हैं तो पर्याय है कि नहीं? तो उसको मुख्य गौण करके हम पहले ज्ञात करते हैं, जानते हैं, और फिर आश्रय जब लेते हैं तो पूरा पूरा वो हाथ में आता है। यानी उस समय पर्याय ज्ञान में नहीं आती है, सिर्फ स्वभाव आता है, ऐसा नहीं है। वो अभी इसने जो बताया, सारे भेद जिसमें गर्भित है ऐसा अभेद आत्मा ही अनुभव में आएगा, और वही सच्चा अनुभव है। हाँ, वो पर्याय जो है वो अभी अवस्था यानी पर्यायों को गौण करके, यानी उसके तरफ ध्यान न देते हुए पूरा जो उसका स्वभाव भाव है उस स्वभाव भाव को जानेगी, यानी उसने आत्मा का अनुभव किया, उसने आत्मा का आश्रय लिया, उसने आत्मा का आधार लिया, ऐसा कहेंगे। अन्य को गौण किया, इसको मुख्य किया, ऐसा कहेंगे, कहने में नहीं लगेंगे, अनुभव में नहीं। देखो फिर ये अभी जो पैराग्राफ पढ़ते थे नीचे से थर्ड लाइन आपको बोलने, परंतु आई कहे तो आई तो एम सिद्ध करबू छे, यहां जो मूल गाभा है तो किसका, ये गाथा का जो मूल सार है कि जे पर्याय छे तेना आश्रय परम पारिणामिक भावनो अनुभव थतो नथी। सात तत्वो जे कया हता ते पण पर्यायात्मक तत्वो छे, तो एना आश्रय आत्मानो अनुभव थतो नथी, ऐसा कहते हैं। यहां अब चार पांच भाव में से जो चार भाव है वो पर्यायात्मक भाव है, स्वभावात्मक तो एक परम परिणामिक भाव है, तो ये चार भाव का आश्रय करेंगे तो आत्मा अनुभव में नहीं आएगा, ऐसा समझाते हैं। तो ये मूल बात यही है, देखो जे पर्याय छे तेना आश्रय शू थ परम परिणामिक भाव नो अनुभव थतो नथी। तो वहां तो पहले तो तत्वों से बात उठाई, अभी यहां भावों की अपेक्षा से कह रहे हैं। आत्मानो अनुभव त्रिकाली भगवान आत्मा मां, अभी जो त्रिकाली होगा सुनना, तो एक समय की पर्याय जो उसकी उस अवस्था की होगी वो होगी कि नहीं, त्रिकाली भगवान है लेकिन उस अवस्था को गौण करके जो त्रिकाली स्वभाव है जिसको शास्त्रीय भाषा में एक सदृश परिणाम कहते हैं, यानी एक जैसा है 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 पना, वो अवस्था नहीं लेना उसने, लेकिन है पना जो है त्रिकाली एक सदृश परिणाम कहने से वो कोई परिणमन है अवस्था है हालत है उसकी बात नहीं है, लेकिन है ऐसा जो है पना जो है उसका हम लक्ष्य करेंगे। तो उसका लक्ष्य करेंगे तो वो जो है नामक जो कोई द्रव्य है वो पर्याय सहित होगा क्या रहित होगा, लेकिन उस पर्याय को हम बीच में नहीं ले रहे क्योंकि उसका लक्ष्य करेंगे तो इन्होंने बताया ना राग द्वेष होता है, लेकिन है तो ऐसा जो स्वभाव भाव है त्रिकाली उसी का हम आश्रय लेंगे तो हमें अनुभव होगा। तो उसके साथ उस समय की पर्याय वो अभेद हो गई, कहा ना उसने, क्योंकि ये देखो ये आईना है मान लो, तो हम आईना ऐसा घुमाते हैं सब जगह, तो जहां जहां घुमाएंगे उसका प्रतिबिंब इसमें आएगा। अभी यहां डॉक्टर साहब दिखेंगे या अन्य दिखेंगे, अन्य अन्य ऐसा करते करते हमने क्या किया, स्व के तरफ लाया, तो उसमें कौन झलकेगा, जो अपना स्व स्वभाव है पर पदार्थों से हटकर, हटकर यानी क्या हे हटो 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 ऐसा नहीं, उनका लक्ष्य छोड़कर उनका जानने का बंद करके जब यह जीव अपने स्वभाव को अपने स्वरूप को जानते रहेगा, यानी उसने क्या किया अपना उपयोग पर से हटाकर स्व में केंद्रित किया। अभी भाषा में तो ऐसा ही बताएंगे कि अन्य को गौण करके स्व को मुख्य किया, ये तो बात हुई। अभी स्व में पर्यायों से दृष्टि हटाकर त्रिकाली स्वभाव पर लक्ष्य केंद्रित किया, उसमें उपयोग लगाया, तो उसे ज्ञात जो होगा वो अनुभव होगा वो तो पूरे आत्मा का ही होगा। देखो अभी उसमें देखने के भी दो अपेक्षाएं, एक दृष्टि प्रधान कथन है और एक ज्ञान प्रधान कथन है। दृष्टि प्रधान कथन में जो त्रिकाली स्वभाव है उसकी ही श्रद्धा होगी इस जीव को, लेकिन उस वक्त ज्ञान क्या जानेगा, इसमें द्रव्य है गुण है पर्याय है, वो स्व को भी जानेगा पर को भी जानेगा। अभी यहां तो ज्ञान प्रधान कथन चल रहे हैं और समय सार आदि में दृष्टि प्रधान कथन कहो या श्रद्धा प्रधान कथन कहो द्रव्य प्रधान कथन कहो वो होगा कि जिसका आश्रय करने से आत्मा अनुभव होगा। यहां पर भी आत्मा के अनुभव की ही बात कर रहे हैं लेकिन ज्ञान की मुख्यता से कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ज्ञान तत्व अधिकार ही पढ़ रहे हैं। ज्ञान तो जानेगा, किसको नहीं जानेगा, सबको जानेगा। माफ करना मैं प्रवचन सार की बात लेके बैठा हूं, यहां तो शुद्ध भाव अधिकार चल रहे हैं, मेरी गलती हुई। शुद्ध भाव अधिकार में तो शुद्ध जो त्रिकाली स्वभाव है उसकी बात करेंगे, परे की बात नहीं करेंगे। देर ही बात, मैं अभी प्रवचन सार से बाहर ही नहीं निकला हूं। तो यहां जो त्रिकाली स्वभाव भाव है उसकी बात करेंगे। देखो क्या कहते हैं, જે પર્યાય છે તેના આશ્રયે પરમ પારિણામિક ભાવનો અનુભવ થતો નથી. આત્માનો અનુભવ ત્રિકાળી ભગવાન આત્મામાં અંતર ઢળતા, એ ઢળતા એને કહેવાય. એસો કૂદકી મારને કહે, સૂર મારને કહે, એસો પાણી મેં એસા નહીં, ડૂબકી મારને કહે, ઉસી કે બારે મેં ચિંતન કરતે 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 એસા સમય આ જાતા કે ચિંતન ભી બંધ હો જાતા, મેં ઇસ રૂપ હી હું એસી જબ ખાતરી હો જાતી તો આત્માનુભવ હૈ. કે ઉસી વખત જો જ્ઞાન હૈ ઉસકો સમ્યક જ્ઞાન કહેંગે, ઉસી વખત જો આત્મા મેં સ્થિત હૈ ઉસકો સમ્યક ચારિત્ર કહેંગે. આટલી વાત કરવી છે. આહા હા, આ શરીર તો હાડકા જડ પર અજીવ છે, આ કઈ આત્મા નથી. તેવી રીતે વાણી અજીવ છે, આત્મા નથી, અને કર્મ પણ અજીવ છે, આત્મા નથી. હવે કહે છે કે પુણ્ય પાપના વિકલ્પ પણ આત્મા નથી. ક્યાં કહા? દેખો પહેલે તો એ સમજાયા કે યહ જો શરીર મન વાણી હૈ, જો નો કર્મ હૈ વહ જીવ નહીં, જો દ્રવ્ય કર્મ હૈ કર્મ છે એ પણ જીવ નથી. બોલે ને યહાં કહા ગયા? અને સેકન્ડ લાઈન, અને કર્મ પણ અજીવ છે, યાને ઉસમે દ્રવ્ય કર્મ કો ભી હટા દિયા. અભી ઉસકે બાદ મેં ભાવ કર્મ પે આતે હૈ. તો ક્યાં કહા કે છે? તો હવે કહે છે થર્ડ લાઈન કે પુણ્ય પાપના વિકલ્પ પણ આત્મા નથી. કેમ કે તે અવદયિક ભાવ છે. વો દોનો મેં કોઈ ભાવ નહીં લગતે, કર્મ મેં ઓર શરીર મનવાની મેં, ક્યો જુદા દ્રવ્ય ને. અને અંદરમાં ઔપશમિક ક્ષાયોપશમિક ને ક્ષાયિક ભાવનો જે પર્યાય પ્રકટ થાય છે તે પણ એક સમયની દશા હોવાથી આત્મા નથી. ખ્યાલમાં અહીંયા ત્રિકાલી કે વાત ચાલ રહી, એક સમય કી બાત હિ નહીં ઉઠાય. ભગવાન આત્મા તો ત્રિકાળ અખંડ આનંદનો પુંજ ધ્રુવ પ્રભુ છે, અને તેની અપેક્ષાએ આ ચારેય ભાવોને અનેરા ભાવો કહેવામાં આવે છે, તથા તે ભાવોને ભગવાન આત્મા અગમ્ય છે એમ કહે છે. તે ભાવોને ભગવાન આત્મા અગમ્ય છે તેનો અર્થ શું છે? કે બાર બાર કહે રહે તો ઉસકા અર્થ ક્યાં લેના હું? હમકો તો એસા લગતા કે ઉન ભાવોન સે આત્મા મેં આત્મા પકડ મેં નહીં આયેગા, એસા યે સેન્ટેન્સ લગતા હૈ. એટલે ઉન્હોને ખુલાસા કિયા કે ઉસકે આશ્રય સે નહીં હોગા, ઉસસે તો આત્મા ગમ્ય છે એસા બતા દિયા થા. યહાં કહેતે તે ભાવોને ભગવાન આત્મા અગમ્ય છે તેનો અર્થ શું છે? કે તે ભાવોથી આત્મા ગમ્ય તો છે. અભી આપકે મન મેં ક્યાં હૈ પાપ હો ઉનકે ખ્યાલ મેં આ ગયા. યાને આપને દિમાગ મેં કોઈ એસી ઉલટી બાત ચલતી હૈ તો ગુરુદેવ જાને. ક્યાં કહા? તે ભાવોથી આત્મા તો ગમ્ય છે, પણ ચાર પ્રકારના તે પર્યાયરૂપ ભાવોના આશરે પરમ પારિણામિક ભાવનો અનુભવ થતો નથી એમ કેવું છે? ભારે ભાઈ, આ વાત બહુ અટપટી છે. અપની તરફ થી બોલને વાળા ભી કોઈ થા વહા પર, પણ ભાઈ આ વાત લોજિક થી તો આવે છે. આ વાત કઈ એમને એમ વગર સમજે માની લેવું, માની લેવી એવી એવું તો નથી. પરંતુ વસ્તુ સ્વરૂપને પડખે તો કોઈ દી આવ્યો જ નહીં. ક્યાં કહા? હવે થોડા સા ભાષણ ખ્યાલ મેં ક્યાં બોલતે દેખો દેખો ક્યાં કહેતે? પરંતુ વસ્તુ સ્વરૂપને પડખે તે કોઈ દી આવ્યો જ નથી. યાને ઇસ જીવને આજ તક આત્મા કે સ્વભાવ કા કભી સોચ હી નહીં કિયા, ઉસકે બારે મેં કભી સોચા હી નહીં. હમે તો મેં તો પર્યાય જીતના હું, મેં ભાઈ ક્યાં કરે, હમારે જ્ઞાન મેં નહીં આતા, હમારા જ્ઞાન તો બહુ એસા હૈ એસા હૈ, તો ઇતના પર્યાયાત્મક હમકો સમજા. ઓર કોઈકા બહુ જ્ઞાન કા ઉઘાડ હોય, અરે મેરે સે કોણ ટક્કર લેતા હૈ, આને દો મેરે સામને, મેં દેખતા હું. વો જીતના ઉઘાડ હૈ જ્ઞાન કા ઉતના ઉસને માન લિયા. પર્યાય જીતના આપને કો માના કભી ભી, અરે તું તો કેવલ જ્ઞાન સ્વભાવી હૈ ને પ્રભુ, તેરા સ્વભાવ તો સિદ્ધ સમાન હૈ. તો વસ્તુના સ્વરૂપને પડખે, ક્યાં લિખા? वस्तु स्वरूप ने पढ़ के, वस्तु स्वरूप यानी यहां आत्मा का जो स्वरूप है, वस्तु यानी कोई पदार्थ है ऐसी बात नहीं, जो आत्मा का जो स्वभाव भाव है, आत्मा का जो स्वरूप है, इन्हें पढ़ के एटले उस एंगल से कभी जीव आयो ज नहीं, एटले उसके बारे में कभी उसने सोचा ही नहीं। जैसा हम मान लीजिए अभी हम, तो मैं तो ऐसा कहूंगा कि हमने आत्मा बोलना सीखा हो तो गुरुदेव से सीखा, क्योंकि पहले आत्मा फात्मा क्या होता था कुछ पता ही नहीं था। ख्याल में तो यहां ये कहते हैं कि वस्तु स्वरूप ने पढ़ के, यानी आत्मा को भी देखने की दो दृष्टियां है, एक पर्याय दृष्टि और एक द्रव्य यानी स्वभाव दृष्टि। क्या कहा? परंतु हाँ हाँ ये बोल रहा था मैं कि आत्मा को भी यानी कोई भी द्रव्य को देखने के नजरिया, जिसको हम दृष्टि कहेंगे, जिसको हम पड़खा पड़खा यानी समझते हैं ना, दो बाजू होती है ना, तो एक बाजू कौन सी पर्याय वाली और एक बाजू जो है वो स्वरूप वाली द्रव्य स्वभाव, तो उस द्रव्य स्वभाव के तरफ ये कभी आया ही नहीं, हमेशा पर्याय की तरफ ही रहा। तो परंतु वस्तु स्वरूप ने पढ़ के ते कोई दी आव्योज नहीं, एटले अटपटी वात लागे छे। ये कहा ना अभी, बहु आ बात बहु अटपटी लागे छे, ऐसा बोला तो तेने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है, तो तुझे ऐसा लगना स्वाभाविक है। सत ने पढ़ के ते कोई दी चढ़ियोज नहीं, अने वगर समझे एम ने असत्यना पड़खा सेवी ने जिंदगी पूर्ण करीने चौरासी ना अवतार मां चालियो जाय छे। क्या कहा? जो सत्य बात है, सत सत्य नहीं, सत सत यानी जो त्रिकाली जो ऐसी विद्यमान वस्तु है, इसके तरफ तूने कभी देखा ही नहीं, उसका कभी ज्ञान किया ही नहीं। क्या लिखा? देखो देखो देखो, सत्य ने पढ़ के ते कोई दी चढ़ियोज नहीं, यानी जो त्रिकाल कायम टिकने वाली ऐसी जो वस्तु है, उस वस्तु का तूने आज तक ज्ञान किया नहीं है। तो कहते ये सत न पढ़ के चढ़े नहीं, अने वगर समझे यानी उसका कभी भी अभ्यास किए बिना, असत्य न पढ़खा यानी जो सत्य नहीं है ऐसा सारा असत्य ही है, तो ये सेवी ने यानी उसका ही ज्ञान कर करके जिंदगी पूर्ण करी ने चौरासी ना अवतार मां चालियो जाय छे। क्या कहा? यार यह जो तुझे मनुष्यपना मिला है और तुझे इस मनुष्यपने में अपने स्वरूप का समझना, अपने स्वरूप की पहचान करना जितना आसान है, अन्य गति में उतना नहीं, तिरंज गति में जावे तो उसको कितना शास्त्र पढ़ने को मिलेगा? कोई मेरे जैसा तिरंज होगा, सामने शास्त्र रखा होगा तो चाप चाप के खा डाले, लेकिन हमें तो इतना तो विवेक है कि शास्त्र तो उसका पढ़ने के लिए है, उसका आदर करना है, उसको समझना है, वो बात ना तिरंज में है और ना नारकी में है। नारकी तो ऐसी परिस्थिति है कि वहां तुम्हें कोई उपदेश भी करने वाला नहीं मिले, यहां तिरंज को तो कभी कभी बाय चांस लॉटरी लग जाए तो दो दो उपदेशक एक साथ मिल जाए। क्यों? सातवें नारकी को, सातवें नरक में रहने वाले को कौन आवे? कोई नहीं। तो कहते हैं कि जो असत्य ना पड़खा सेवी ने जिंदगी पूर्ण करी ने चौरासी ना अवतार मां चाले हो जाए छे, यानी कहां जाएगा वो लापता हो जाएगा, चौरासी लाख योनि में किधर जन्मेगा कौन जाने। आई कहे छे के आत्मा मां बे अंशो छे। वाह, शूं कीधुं? एक अनादि अनंत त्रिकाणी ध्रुव अंश ने वर्तमान पर्याय नो अंश जे चार पर्याय रूप भाव छे ते, वो क्या है? वर्तमान पर्याय नो अंश तो ते पर्यायना आश्रय आत्मानो अनुभव थतो नथी। देखो बहुत सुंदर समझाया, क्या कहा, जे पर्यायना आश्रय ले एने आत्मानो अनुभव थतो नथी, पण त्रिकाळी ध्रुवना आश्रय आत्मानो अनुभव थाय छे, माटे ते चार भावो थी आत्मा ने अगम्य कहेवामां आव्यो छे। बहुत आसान बात है, बाकी औपशमिक क्षायोपशमिक ने क्षायिक भाव ने तो आत्मा गम्य छे, એટલે ઉન ભાવો કે ત્રિકાળી ધ્રુવના આશ્રય આત્માનો અનુભવ થાય છે, માટે તે ચાર ભાવોથી આત્માને ગમે કહેવામાં આવે છે, બાકી ઔદયિક ક્ષાયોપશમિકને ક્ષાયિક ભાવને તો આત્મા ગમે છે, પણ ઔપશમિક ક્ષાયોપશમિકને ક્ષાયિક ભાવને આશ્રય તેનો અનુભવ થતો નથી। અર્થાત તે ભાવોનો આશ્રય કરવા જાય ને આત્માનો અનુભવ થાય એમ બને નહીં। આ બધી તો એકલી નિશ્ચયની વાતો આવે છે, પણ તેને પામવાનું કોઈ સાધન હશે કે નહીં? બહુ ઉતાવળા હો ગયા, કોણ પૂછને વાલા, કે તમે તો ખાલી નિશ્ચય 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 કરો, કઈ વ્યવહારની વાત કરો કે ભાઈ આટલા ઉપવાસ કરવાને, આટલા દાન દેવાને, આટલા મંદિરો બાંધવાને, એટલી જાત્રા કાઢો, આવું કઈ બોલો યાર, કઈ તમે આ કઈ કરવાનું તો કયો, સાધન તો બતાડો એમ કે। આ બધી એકલી નિશ્ચયની વાતો આવે છે, પણ તેને પામવાનું કોઈ જે સાધન હશે કે નહીં? આ નિશ્ચય જ, એટલે આ જ એક સાધન છે, સાંભળને ભાઈ, તને યથાર્થ સાધનની ખબર નથી। આપની વાત તો સાચી, પણ તેનું સાધન શું છે? ગુરુની ભક્તિ કરવી, તેમને માનવા વગેરે, એવું કાંઈ સાધન છે ખરું? ભાઈ યતિનો સ્વાંગ પણ આત્માના સ્વભાવમાં નથી। ક્યાં કહા, હા યતિ અને સમજમાં આયા નહી? તે જો ક્યાં યતિ અને ક્યાં, હા જોર છે બોલો ભાઈ, મુનિ, યતિ અને મુનિ, યોગી અને મુનિ, સાધુ અને મુનિ, ક્યાં કહેતે હૈ ભાઈ, યતિનો સ્વાંગ પણ એટલે આત્માનો અનુભવ નહીં થાય, અને લુગડા ફેરવ્યા ગુરુદેવ બહુ અચ્છા સમજાતું, યાને પહેલે કલરફુલ પહેનતે તે બાદ મેં સફેદ પહેરને લગે, હા તો એ સ્વાંગ લીધો। અરે વો તો છોડો, નગ્નતા ભી એક સ્વાંગ હૈ ક્યા બેન? આત્મા કા અનુભવ નહીં હૈ, ચારો કશાય ચોકડી ચી વિદ્યમાનતા હૈ, ઓર 28 મૂલગુણ પાલને કા વિકલ્પ હો ગયા, ઓર વહ ભી પાલના શરૂ કર દિયા, તેને પણ અહીંયા સ્વાંગ કહેવામાં આવે છે ભાઈ। કપડા પહેને, દાઢી બડાય, એસા ઉલટા પુલટા ટોપી પહેને તો સ્વાંગ હો ગયા, એસા નહીં? વો પિક્ચર મેં દેખતે ના, યે હીરો હિરોઈન બરોબર પહેચાનતી, બાકી વો વિલન જરા ભી નહીં પહેચાનતા, કોણ સા ભી સ્વાંગ લેવે ऐसा ऐसा, ये स्वांग कैसा है? अरे ये तो साक्षात नग्न है, तुम हो के दिखाओ, ऐसा दम देते ऊपर से क्या? अरे नग्नपनु ते साधुपनु नथी बापा, क्या कहते हैं? तो नाते वक्त भी आप साधु होते होंगे फिर, ऐसा नहीं है। ये लोगों को जरा तीखा लगता है, शू आकरू लगे, पर हूं करे वस्तुस्थिति ने क्या तमें छिपावी दियो? तो क्या कहते, देखो यतिनो स्वांग पण आत्माना स्वभावमां नथी, माटे ते साधन नथी। अलिंग ग्रहण में आवे छे ने के यतिनो बहारनो वेश, अर्थात नग्नपनु ने विकल्प, विकल्प एटले 28 मूलगण पालन करवानो विकल्प स्वरूप में नथी। यहां नियम सार में प्रवचन सार गाथा 172 के अलिंग ग्रहण का बोल नंबर 17 ये रेफरेंस दिया है। शू कहूं कि यतिनो बाह्य वेश ने बाह्य क्रियाओं ए पंच महाव्रतनो विकल्प आदि छे ते आत्मवस्तु मां नथी, केम के बधो राग छे ते उपरांत आई तो कहूं के चार पर्याय रूप भावों ने आत्मा अगम्य छे। अगम्य नो अर्थ एटलो छे के चार पर्याय रूप भावों ना आश्रय आत्मानु ज्ञान थतु नथी। ये बात तो गुरुदेव ही हमको समझा सकेंगे, अपनी बस की बात नहीं थी कि हम डायरेक्ट पढ़ के ये बात निकाल सकते थे उसमें से। आत्मानु ज्ञान तो आत्माना आश्रय थाय छे अने ए अपेक्षाए ते चार भावों ने आत्मा अगोचर छे एम कहूं छे, नहींतर तो औपशमिक क्षायोपशमिक ने क्षायिक भाव ने आत्मा गम्य छे, એટલે ઇન ભાવો કે માધ્યમ સે ઇન ભાવો કે દ્વારા આત્મા કા અનુભવ હોતા હૈ, લેકિન ઇન પર્યાયો કા હમ આશરા લેંગે ઉનકે આશ્રય મે રહેંગે તો આત્મા અનુભવ મે નહીં આયેગા। ઇતની હી બાત સમજા રહે હૈ। આહા આવો વિતરાગ માર્ગ બહુ ઝીણો પડે, એટલે પછી લોકોએ દયા પાડો, પૂજા કરો, જાત્રા કરો ને નગ્ન થઈ જાઓ વગેરે ક્રિયામાં માર્ગ માની લીધો। એ સેલું ને સઠ છે ને, એકવાર 5-25 લાખ રૂપિયા આપ્યા એટલે આપણે છૂટા થઈ ગયા બીજા પાપ કરીને પૈસા ભેગા કરવા માટે, એમ કહે છે। પણ મૂળ માર્ગ વિના કલ્યાણ થતું નથી। અરે બ્રહ્મણાએ જગતને મારી નાખ્યું છે, બ્રહ્મણાએ ને ખોટી ખોટી માન્યતા જો હે, અરે રે જગતની બ્રહ્માને પાર નથી। આહા ત્રણ લોકનો નાથ એવો પોતે એક સમયમાં વિરાજે છે, યાને સ્વયં કો ક્યા કહેતે ત્રણ લોકનો નાથ કિસકો બતાયા, સબ અપની કી બાત કર રહે ના ગુરુદેવ, અરે નહીં પાગલ સબકી બાત કર રહે, યાને આ બ્રહ્માએ ક્યાં લખ્યા, આહા ત્રણ લોકનો નાથ એવો પોતે એક સમયમાં વિરાજે છે, છતાં તેની સામુ જોતો નથી ને પર સામુ જોઈને તેને પોતાનું કલ્યાણ કરવું છે। અહીં તો કહ્યું કે આ પર્યાયના કે જે પરદ્રવ્ય છે તેના સામુ જોવાથી પણ કલ્યાણ નહીં થાય તો એ આત્મા કહો કે કારણ પરમાત્મા કહો કે કારણ જીવ કહો કે નિજ પદ કહો, બધું એક જ છે। શું કહ્યું કીધું કે જે ત્રણ લોકનો નાથ છે એવો જે પોતાનો એક સમયમાં વિરાજે છે તેની સામે જોતો નથી અને પર સામુ જોઈને, પર એટલે કોણ, સાચા દેવગુરુ શાસ્ત્ર એ પણ સાચા હો, પાછું બીજો કોઈ ગુરુ એવો પણ મળે જા તારું કલ્યાણ કરી આપું, જરા અહીંયા તારી પાસે મૂડી છે તો મને નહીં આપ, પેલા નહીં આપ, પેલા મારા આસિસ્ટન્ટ હું તો છૂતો નથી, એને એમ પણ મળે ને। હર સમય એક સમય યાને અભી વર્તમાન સમય, તો અગલે સમય મેં હે, ઉસકે અગલે સમય મેં, ઉસકે પહેલે ભૂતકાલ કે સમય મેં, એસે એક સમય મેં યાને હૈ, વો હર સમય મેં ત્રિકાલ હૈ। અહીં જુઓ એ જ કહે છે કે જે એટલે કારણ પરમાત્મા પોતે ત્રિકાળી આત્મા દ્રવ્યકર્મ ભાવકર્મ અને નોકર્મ ઉપાધિથી, એ ઉપાધિ કહા, એ દ્રવ્યકર્મ કો ભાવકર્મ કો, અભી હમને મેરે ખ્યાલ છે કિસમે પઢા થા, પ્રવચન સાર મેં પઢા થા કે વો જો મુનિરાજ હોતે ઉનકો દેહ માત્ર પરિગ્રહ હૈ, દેહ ભી ઉનકે લિયે પરિગ્રહ થા, બાકી તો કોઈ ચિટર પુટર બાદ મેં ઇસી મેં થા। હા દેખો ક્યાં સબ એક હી હૈ, દોનો એક આચાર્ય ને લિખા હૈ, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। ये क्या कहा देखो, पोते त्रिकाली आत्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्मा ने नो कर्मन रूप उपाधि थी, द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म के जे जड़ अजीव छे, भाव कर्म अर्थात दयादान व्रत पूजा भक्ति वगैरह नो विकल्प उठे ते अने ते पण उपाधि छे। जो छे ने के भाव कर्मा ने नो कर्म उपाधि थी, तो भाव कर्म पण उपाधि छे ने, त्रणे कर्म उपाधि छे, आठ जड़ कर्म ए उपाधि छे, दयादान व्रत भक्ति पूजा ना विकल्प नु उठवू के जो परोपकार आदि नी वृत्ति उठवी ते पण उपाधि छे। एटले के भाव कर्म, भाव कर्म कोने कहेवा, विकारी भाव पण उपाधि छे, अने नो कर्म एटले शरीर आदि पण उपाधि छे। जे आ बधी शरीर नी क्रिया थाय छे ते नो कर्म नी एटले जड़नी क्रिया छे, ते कई आत्मानी क्रिया नथी, ने आत्मा तेने करी शकतो पण नथी, तेने एटले शरीरनी क्रिया ने आत्मा करी शकतो नथी। एवी उपाधि थी जो त्रणे कर्म ने उपाधि कहे छे, जड़ कर्म उपाधि छे, भाव कर्म उपाधि छे, अने शरीरादि नो कर्म पण उपाधि छे। अरे जे भावे तीर्थंकर नाम कर्म बंधाय ते पण उपाधि छे, केम के भाव कर्म मां आवे ने भाई, गजब करे छे ने। आत्मा उपाधि थी जनित विभाव गुण पर्यायो विनानो छे। बेन ये त्रिकाली आत्मा की बात हो रही, पर्याय के बिगर। आत्मा एवी उपाधि थी जनित विभाव गुण पर्यायो विनानो छे। विभाव एटले विशेष रूप विकार आदि के पर्याय आदि अने एवा विकार के अविकार पर्यायो विनानो, विकारी अने रागद्वेष रूपी और अविकारी अने जो शुद्ध पर्याय है सौवन निर्जरा मोक्ष रूप ए विकारी पर्यायो थी एना विनानो त्रिकाली आत्मद्रव्य छे। आई सुधी तो आजे चालियू छे, बीजा 23 तारीख है। देखो गुरुदेव को और हमारा टाइमिंग भी कितना फिक्स है, ये अहीं सुधी तो काले चालू छे, आपणे तो आजे आटल चालवे छे।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तकणमो सदा देतो।
बोलो जिनवाणी माता की जय।